SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर।
इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं और मारूफ हैं इस हवाले से, और वो ऑस्ट्रेलिया तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको SBS उर्दू में खुश आमदीद कहता हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है, मैं बेसिकली सर्जन हूं और मेडिकल टीचर हूं, और 35-36 साल मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा और फिर मैं उसके प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हुआ। तो वहाँ मेरी जो जितनी भी तालीम तरबियत का मौजू थे वो तो सर्जरी से मुतालिक थे। उसके बाद जब मैं सरकारी नौकरी से मुझे फरागत हुई तो मैंने ये देखा कि हमारे माशरे में, बिलखसूस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, जितने भी बहरान हैं उन बहरानों का की जो जड़ है ना, जो मदर बहरान है और क्राइसिस है, वो किरदार का बहरान है। और जहां आपको कोई फाइनेंशियल आ रहा है, पॉलिटिकल बहरान नजर आ रहा है, किसी किस्म का कोई समाजी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो उसके पीछे लोग हैं जो कि तरबियत याफ्ता नहीं है, या यह है कि उनकी जिस तरीके से तरबियत की जानी चाहिए थी उस तरीके से तरबियत नहीं हुई। तो शुरू में तो मैं एट रैंडम बहुत से मौजूदात के ऊपर अपनी रिसर्च की बुनियाद पर और अपनी यानी मुताले की बुनियाद पर और बड़े लोगों से मुलाकात की बुनियाद पर जो मेरा एक हम्बल सा एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर किया करता था। लेकिन इसी दौरान मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो जो मेरी और आपकी उम्र के लोग हैं ना, या जो बड़े लोग हैं, इनका तब्दील होना, ये भी तब्दील हो सकते हैं मगर इनके तब्दील होने की डायनामिक्स जो है वो बड़ी मुश्किल है। उसकी निस्बत वो बच्चे जो अभी हमारे गोद में हैं, या वो बच्चे जो अभी इस दुनिया में उन्होंने आंख नहीं खोली और दुनिया में आने वाले हैं, यानी वो यानी पोटेंशियल पेरेंट्स, उनको ये सिखाया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में मेरी रिसर्च भी उसी के ऊपर है, एक किताब भी है जो अभी अब पब्लिश होने के करीब है, और उस सिलसिले में मैंने शायद ही पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, और बरतानिया में भी, अमरीका में भी, नॉर्वे में भी, और मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में सफर करता रहा और अपने ख्यालात का इजहार करता रहा। और मैंने ये महसूस किया कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में पोटेंशियल पेरेंट्स को वो उसूल बताए जा सकते हैं जिनकी बेसिस ह्यूमन साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, चाइल्डहुड साइकोलॉजी है, और फिर उस्वाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। जिन लोगों ने भी उस पर अमल किया तो उन्होंने एक वाज़े फर्क महसूस किया कि उनके घरों का माहौल चेंज हुआ और बच्चों की तरबियत के सिलसिले में बहुत ज्यादा उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो मैंने ये सोचा कि अब मेरी जिंदगी बच गई है जितनी, उसको मैं यानी खसूसी तौर पर इसी काम के लिए वक्फ करूं। इसके अलावा एडल्ट्स के लिए भी हमारी जिंदगी में कैसे एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ के अंदर होता है, और हम ये अपने आप को एक फिजिकल बीइंग की बजाय एक इन टोटैलिटी ये समझें कि हम एक फिजिकल बीइंग हैं जिसका इंटेलेक्ट है, जिसकी इमोशनैलिटी है, और अबव ऑल हमारी एक स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी से मुराद कोई मजहबी इंसान होना नहीं, मेरा मुराद सिर्फ जो भी कुछ हम करते हैं ये अहम नहीं है कि व्हाट वी डू और हाउ वी डू, ज्यादा अहम ये बात है व्हाई वी डू। और ये जो वाई का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है, ये इंसान को एक पर्पस देता है। तो ये भी वो एक एरिया है कि जिसके ऊपर मैंने कुछ काम किया, और उस सिलसिले में कुछ डूएबल स्किल्स जो हैं और किस तरीके से उनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। और इसके अलावा ऑब्वियसली एंगर मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और जो मेरी अपनी सर्जरी की फील्ड है वो तो खैर अपनी जगह पर है ही। तो ये वो मौजूदात हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ मैं कुछ अपनी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन करता रहता हूँ, और तकरीबन यही मौजूदात होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में दोस्तों से जब मुलाकात होगी तो उसमें हम इस पर गुफ्तगू करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया जैसे मगरबी ममालिक में कुछ वालदैन को आप टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चों को इस तरह की दोहरी सकाफतों के दरमियान किस तरीके से तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है, और उसको उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है इस हवाले से?
देखिए, ये जो सवाल है, मुझे नहीं याद कि कोई भी एक वर्कशॉप हो जो यूरोप में कहीं हुई हो, अमेरिका में कहीं हुआ हो, जिसमें ये सवाल ना पूछा जाता हो। और ये वाकई एक बहुत बड़ा कंसर्न है उन लोगों का कि जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और मशरकी ममालिक में पैदा हुए थे, लेकिन अब उनकी फर्स्ट जनरेशन जो है वो वहाँ मगरबी ममालिक में है। तो उनको इस बात का बड़ा, क्योंकि वो खुद अपनी तहजीब के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें हमेशा ये खतरा महसूस होता है कि जो पीयर प्रेशर है और जो बाहर की दुनिया के असरात हैं, जिनके अंदर इल्हाद अब एक बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, और ख़ास तौर पर अब ये जो नए बहुत से फिनोमेनास जो हैं वो डिस्कशन में आते हैं, तो बच्चे चूंकि ज्यादा खुले तरीके से, मगरिब में पैदा होने वाला बच्चा वो फ्री है अपनी राय के इजहार के लिए और वो आर्गू करता है, तो ये वालदेन का ये कंसर्न बिल्कुल बजा है जो आप फरमा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करता हूं देखिए, जैसे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही हो ना, लेकिन आपके बच्चे को बाहर जाना है हर सूरत, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बाहर की बारिश को रोका जाए तो फिर मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, तो उसे तो बारिश में जाना होगा। लेकिन यह है कि आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जबरदस्त सा रेनकोट उसको दे देंगे, उसको एक छतरी दे देंगे और ऊंचे ऊंचे जूते उसको दे देंगे ताकि वो बाहर की बारिश से बच सके। बिल्कुल इस तरीके से मैं इस बात को समझता हूं कि अगर हम 5 यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चे, 5 से 7 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर पेरेंटिंग के वो प्रिंसिपल जिनका मैं बार बार यादा करता हूं उनके मुताबिक अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करें और हम उनको उस तरह का फिजिकल टाइम दें जो कि बच्चों को जरूरत है और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि बच्चों का 7 साल की उम्र में एक डेफिनेटिव वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक घर के नक्शे का ग्रे स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। जब वो ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद आप उसमें से नक्शे में यानी चेंज करके बाथरूम को किसी और जगह पे नहीं ले जा सकते, ड्राइंग रूम को किसी और जगह पे नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके अंदर फिर जबरदस्त किस्म की आप क्वालिटेटिव इंक्रीज इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूं तमाम दोस्तों से कि बच्चों की जिंदगी में सबसे अहम वक्त जो है वो 0 डे से लेकर 7 साल की उम्र का वक्त होता है। इस उम्र में अगर वालदैन घर के अंदर उनका एक वैल्यू सिस्टम ऐसा डेवलप कर दें कि जो वैल्यू सिस्टम हमारी तहजीब के साथ, हमारे दीन के साथ और हमारे अपने तमद्दुन के साथ, या फर्ज करें कोई शख्स गैर मुस्लिम भी है तो जो भी वैल्यू सिस्टम उसके पेरेंट्स समझते हैं कि सही वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम की अगर हम उनका फ्रेमवर्क बना दें दिमाग, उस बच्चे के अंदर एक ताकत मौजूद होगी कि उस पीयर प्रेशर को गुड आर्गूमेंट के साथ रिजिस्ट भी कर सकेगा और उसके मुकाबले में अपना अपनी लाइफ को भी एक तरतीब दे सकेगा। तो ये बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये बात पूछी है, और मेरा ख्याल है कि मगरिब में रहते हुए खास तौर पर ये बहुत ही समझने की जरूरत है। और मैं अपने स्टोर के दौरान अपनी गुफ्तगू में इंशाल्लाह इस मौजू को खास तौर पर टच करूंगा इंशाल्लाह।
एक और अहम बात जो आमतौर पर वालदैन को परेशान करती है वो इस वक्त सोशल मीडिया का जो एक टूल यलगार की शक्ल में छाया हुआ है। इसके मस्बत और मनफी दोनों ही पहलू हैं, मगर सोशल मीडिया और बाहर की दुनिया और मगरबी दुनिया खास तौर पे जो कुछ मवाद वहां पर मौजूद है, उस सूरत हाल में ये कितना अहम है कि वालदैन बच्चे के साथ अपने ताल्लुक को एतिमाद की बुनियाद के ऊपर कायम करें, यानी उनके दोस्त और हमउम्र बताने लगते हैं तो वो उनकी जानिब ज्यादा उनका रुझान हो जाता है। कितना अहम है कि वालदैन इस हकीकत को समझ सकें कि इन टॉपिक्स पर बात करना अहम है।
जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम बात की है। जी बिल्कुल, मैं यही बात ही अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, हम एडल्ट भी जिसकी बात सुनना चाहते हैं या जिसकी बात की हमारे नजदीक अहमियत होती है, अमूमन वो इस बुनियाद पर नहीं होती कि बात क्या की जा रही है, अमूमन वो इस बुनियाद पर होती है कि ये बात कौन कर रहा है, और उस शख्स के साथ जो हमारा ताल्लुक होता है वो ताल्लुक डिटरमिन करता है कि हम उसकी बात को कितनी वैल्यू देंगे। जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाय डिफॉल्ट उसके जहन में अपने वालदैन के बारे में ये 3-4 बातें होती हैं, जिसमें से पहली बात यह कि मेरे वालदैन दुनिया में सबसे अच्छे वालदैन हैं, मेरे वालदैन जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता, मेरे वालदैन को सब पता है और जब कभी मुझे मुश्किल हुई तो मेरे वालदैन मुझे बचा लेंगे। ये 4 बातें बाय डिफॉल्ट तमाम बच्चों के जहन के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं। वो वालदैन जो अपने रवैये के जरिए, और वो वालदैन जिनको इस बात की एक कॉन्शियस अवेयरनेस होती है कि पेरेंटिंग को किस तरीके से एक तरतीब के साथ और एक जरूरी काम के तौर पे करना है, वो बच्चे के 7 साल की उम्र की हद को पहुंचने तक अपनी इस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। जब वालदैन अपने बच्चे के साथ इस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी उस पर बेजा सख्ती नहीं करते, यानी उसके साथ वक्त गुजारते हैं, यानी वो तमाम मशागिल जो बच्चे के मरगूब मशागिल हैं उनमें पार्टिसिपेंट बनते हैं। देखिए, 7 साल से कम उम्र की उम्र में बच्चे को सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की, बच्चे को लर्नर चाहिए होता है। जब वो खिलौनों से खेल रहा होता है तो उसके साथ उसकी माँ या बाप या बड़ा भाई या बहन का होना एक को लर्नर के तौर पर बहुत जरूरी है। अगर वालदैन एज अ को लर्नर बच्चे को फिजिकल टाइम देने पर तैयार होते हैं तो बच्चे की क्रेडिबिलिटी अपने वालदैन पर मुस्तहकम हो जाती है, और जब बच्चे की क्रेडिबिलिटी रहती है तो वो बच्चा फिर अपनी हर बात अपने वालदैन के साथ शेयर करता है। तो बिलफर्ज अगर फर्ज करें एक 6 साल के बच्चे को यह तजुर्बा हुआ, किसी किस्म का कोई नॉस्टी तजुर्बा हुआ, उसने ये देखा कि कोई चीज ऐसी थी जो इखलाक से गिरी हुई चीज थी, अगर उसकी वालदैन के साथ क्रेडिबिलिटी बनी हुई और उसको पता हुआ कि मेरे वालदैन वो जो 4 सिफात मैंने आपको बताई हैं वो उसके हामिल हैं, तो बच्चा फौरी तौर पर अपने वालदैन से शेयर कर लेगा। और अगर वो बच्चा अपने वालदैन से शेयर कर लेगा तो अब वालदैन जो है इस पोजिशन में होंगे कि उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अमूमन जो यंग वालदैन है वो अपने कैरियर के चक्कर में होते हैं, और वो जो वाइटल पीरियड होता है 5 साल का, अपने साथ एतबार कायम करना होता है, वो एतबार कायम नहीं हो सकता। अमूमन बच्चों के सिलसिले में वालदैन का रवैया यही होता है, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं अच्छे आ रहे। तो अमूमन हमारे नजदीक बच्चे की को एक बहुत कामयाब अच्छा बच्चा होने की यार्ड स्टिक है वो उसकी एकेडमिक स्कोर्स ही होते हैं। और अगर किसी वजह से बच्चा उसके अंदर थोड़ा सा भी कमजोर हो तो असल में वालदैन अपने तौर पर तो बच्चे की बड़ी खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे के अंदर एक वहशत तारी कर देते हैं। उस वहशत की बुनियाद पर आपने देखा होगा कि बच्चे अपने वालदैन की बात सुनने को तैयार नहीं होते, उनका कहना मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा, जब वो ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उनकी एक नफ्सियात के अंदर कि वालदैन उसको फिल करने के लिए मौजूद नहीं होते उनकी इमोशनल नीड्स को और उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को, तो फिर बच्चे रुख करते हैं सोशल मीडिया का या और बाहर से दोस्तों का या कुछ ऐसे लोगों का जो जरा उनसे उम्र में बड़े होते हैं और जरा वो ज्यादा किस्म के तजुर्बे जो कि लस्ट से रिलेटेड तजुर्बात हैं वो उनमें से उन बच्चों को गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे का वालदैन से ताल्लुक जो है वो ब्रेक हो जाता है। लिहाजा आपके सवाल का मुख्तसर जो मैं एक बॉटम लाइन जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इस बात की बहुत अहमियत है कि वालदैन उन उसूलों को समझें जिन उसूलों के जरिए से वालदैन और बच्चों के दरमियान रिस्पेक्ट और जो एक एबिलिटी का रिलेशनशिप है वो बरकरार रहे।
यकीनन आपकी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से हमारे सामईन को एक स्नैपशॉट जरूर मिल गया कि किस तरह की यहाँ गुफ्तगू होने वाली है। तो आखिर में हमारे सामईन को ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के किन-किन शहरों में आप टॉक्स हो रही हैं।
हमारे जो मेजबान है ना जी, रक्षंदा, डॉक्टर रक्षंदा साहबा और डॉक्टर इसरार साहब और डॉक्टर सईद जो के मेरे क्लास फेलो भी हैं निश्तर यूनिवर्सिटी, निश्तर मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए, तो उन्होंने मेरा इस कदर टाइट प्रोग्राम रखा है कि मैं इंशाल्लाह 31 तारीख को आऊंगा सिडनी और 10 तारीख को मैं वापस आऊंगा। तो इस दौरान सिडनी में 2 प्रोग्राम हैं, वुलंगोंग में 1 प्रोग्राम है, मेलबर्न में 2 प्रोग्राम हैं और कैम्ब्रा में 1 प्रोग्राम है और एडिलेड के अंदर 2 प्रोग्राम है।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपकी इस मुख्तसर बातचीत में उन तमाम मजामीन और मौजूआत का अहाता नहीं हो सकता जो यहाँ की जाएंगी, तो sabilemustafa.org पर देखी जा सकती है, आपसे रूबरू लोग तमाम इन मौजूआत पर बातचीत सुन सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
ऑस्ट्रेलिया में अपनी कम्युनिटी की सरगर्मियों के साथ खबरों, हालात हाजरा और बेलाक तबसरों के लिए ये SBS उर्दू है, SBS साउथ एशियन पर।